विश्व दर्पण। श्रोताओं, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। आज हमारी चर्चा का विषय है यमन संकट। गंभीर यमन संकट से जूझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश जनता की ओर से सराहनीय रूप से जारी है। इस देश पर मार्च 2015 से सऊदी अरब लगातार बमबारी कर रहा है, जिसमें 10,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जबकि दसियों हजार घायल हुए हैं। यमन के मूल प्रतिष्ठान ध्वस्त हो चुके हैं। सऊदी अरब ने कुछ अरब देशों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया है जो यमन पर सैनिक हमले कर रहा है। यमन के पूर्व राष्ट्रपति मंसूर हादी को सऊदी अरब हथकंडे के रूप में प्रयोग कर रहा है और उन्हें किसी भी स्थिति में सत्ता में पहुंचाना चाहता है, जबकि देश पर बमबारी की दावत देने वाले मंसूर हादी को यमन की जनता खारिज कर चुकी है। वैसे भी मंसूर हादी कोई निर्वाचित राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि सऊदी अरब के प्रभाव वाली फारस खाड़ी सहयोग परिषद के प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति बनाए गए थे। उनकी अवधि पूरी हो चुकी है और वो अपने पद से त्यागपत्र देकर यमन से सऊदी अरब भाग चुके हैं, लेकिन सऊदी अरब की कोशिश है कि मंसूर हादी को फिर सत्ता मिल जाए। सऊदी अरब की इस जिद के पीछे ये कारण नहीं है कि उसे मंसूर हादी से कोई लगाव है। सच्चाई यह है कि सऊदी अरब को यमन में ऐसा शासक चाहिए जो रियाद सरकार के इशारों पर काम करे। सऊदी अरब की ये योजना सफल नहीं हो पाई और 20 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद मंसूर हादी देश की राजधानी सना में वापस नहीं आ सके। मंसूर हादी दक्षिणी शहर अदन में कभी कभी नजर आते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि दक्षिणी यमन का प्रमुख शहर अदन भी मंसूर हादी के नियंत्रण में नहीं है। इस शहर में बार बार आतंकी हमले हो रहे हैं और इन हमलों में वरिष्ठ राजनीतिक और सैनिक अधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा है। शनिवार की शाम भी अदन में ऐसा ही हमला हुआ, जिसमें मंसूर हादी के 48 लड़ाके मारे गए और 29 घायल हो गए। इस प्रकार की घटनाएं अदन तथा अन्य क्षेत्रों में बार बार हो रही हैं। इसकी वजह यह है कि यमन भयानक साजिश के निशाने पर है। टीकाकार ये कहते हैं कि असली साजिश अमरीका और इसराइल की है, लेकिन उसका व्यवहारीकरण सऊदी अरब के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन आज स्थिति यह है कि सऊदी अरब यमन युद्ध तथा सीरिया और इराक जैसे क्षेत्रीय संकटों में पड़कर भारी नुकसान उठा रहा है। ब्रिटेन की विख्यात पत्रिका इकोनॉमिस्ट ने अपने एक लेख में लिखा है कि सऊदी सरकार यमन, सीरिया, लिबनान, इराक और ओपेक में हर मोर्चे पर पराजित हो रही है। मैगजीन का कहना है कि सऊदी अरब के रक्षा मंत्री और डिप्टी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने, जिनके बारे में इस मैगजीन का कहना है कि सऊदी शासन इस समय असल में उन्हीं के हाथ में है, जारी वर्ष के शुरू में संकल्प लिया था कि इस साल के अंदर वो यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लेंगे तथा लेबनान में ईरान की पसंद के राष्ट्रपति को सत्ता में नहीं जाने देंगे और इराक में अपना राजदूत भेजकर ईरान को पराजित कर देंगे। लेकिन साल पूरा होने वाला है और इनमें से एक भी लक्ष्य वो पूरा नहीं कर सके, बल्कि सब कुछ सऊदी अरब की इच्छा के विपरीत हुआ है। लेबनान में मिशेल ऑन राष्ट्रपति बन गए, जिन्हें ईरान का घटक माना जाता है। इराक से सऊदी राजदूत अपने देश वापस जा चुके हैं। सनआ पर सऊदी अरब का नियंत्रण नहीं हो सका है। यही नहीं, सीरिया में जिन चरमपंथी संगठनों को सऊदी अरब से आर्थिक और सामरिक सहायता मिल रही थी, उन्हें भारी पराजय हो चुकी है और सीरियाई सेना उनके नियंत्रण वाले क्षेत्रों को आज़ाद कराती चली जा रही है। हलब का बहुत थोड़ा सा ही भाग बचा है जो चरमपंथियों के कब्जे में है। ओपेक में भी जो समझौता हुआ वो ईरान के हित में रहा और सऊदी अरब अपनी मनमानी नहीं कर पाया। यमन की लड़ाई में निश्चित रूप से सऊदी अरब ने अपनी बमबारी से यमन के मूल प्रतिष्ठानों को ध्वस्त करके रख दिया, लेकिन दूसरी ओर यमनी सेना और स्वयंसेवी बलों की ताकत में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उनकी ताकत बढ़ी है। यमनी सेना जवाबी हमले करते हुए सऊदी अरब के जीजान, नजरान और अल असीर नामक सीमावर्ती प्रांतों के भीतर घुस चुकी है। अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर यमनी सेना और स्वयंसेवी बलों का नियंत्रण है।
هذه احدى الاليات الذي احرقها الجيش والرجال الان يقوموا باحراقها الجيش والرجال الشعبيه
الله اكبر الموت في امريكا الموت في اسرائيل اللعنه على اليهود
यमनी सेना और स्वयंसेवी बलों को भारी षड्यंत्र का सामना है, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि उनका मनोबल तनिक भी कमजोर हुआ है। यमन के लोगों में बाहरी शत्रु से निपटने के लिए भरपूर उत्साह है। वैसे यमन के लोकप्रिय अंसारुल्लाह आंदोलन के प्रमुख सैयद अब्दुल मलिक अल हौसी ने सऊदी अरब के सीमावर्ती प्रांतों के आम नागरिकों को आश्वासन दिया है कि वो चिंता ना करें, यमन की सेना और स्वयंसेवी बल सऊदी अरब के सैनिकों को ही निशाना बनाएंगे। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा कि हम सऊदी नागरिकों को अपना भाई समझते हैं और सऊदी अरब की जनता भी वही अत्याचार झेल रही है जो रियाद सरकार यमन की जनता पर ढा रही है।
وأقول لشعبنا العزيز في الجزيرة العربية سكان المنطقة الجنوبية بالمقدمة في جازان في نجران في عسير في المنطقة بكلها أنتم أخوة لنا جيران لنا أشقاء لنا بيننا وبينكم روابط الإسلام روابط الجيران
بہت سے ٹیکاکار یمن کو عرب جگت کا افغانستان और एक अन्य वियतनाम कह रहे हैं। बहरहाल ये हकीकत है कि यमन की दलदल में सऊदी अरब बहुत बुरी तरह उलझ गया है। दूसरी ओर यमनी जनता विदेशी हमलों का सामना करने के साथ ही हालात को संभालने की कोशिश भी कर रही है। यमन में नेशनल सेल्वेशन गवर्नमेंट या राष्ट्रीय मुक्तिदायक सरकार का गठन किया गया है जिसे संसद की स्वीकृति भी मिल गई। इस सरकार ने कामकाज शुरू कर दिया है। इस प्रकार की सरकार का गठन अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं में कोई नई चीज नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के 7वें अनुच्छेद में कहा गया है कि जिन देशों में युद्ध हो और राजनीतिक अराजकता की स्थिति हो वहां नेशनल सेल्वेशन सरकार का गठन करने का प्रावधान है। इसी आधार पर यमन की सर्वोच्च राजनीतिक परिषद ने डॉक्टर अब्दुल अजीज बिन हब्दूर के नेतृत्व में 42 सदस्यों पर आधारित सरकार का गठन किया है। सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के प्रमुख साले सम्माद ने एक साक्षात्कार में बताया कि ये सरकार जनता को सेवाएं देने का प्रयास करेगी और वर्तमान अस्त व्यस्त स्थिति को संभालेगी।
نحن نعتبر اعلان المجلس السياسي هو اتى لتعزيز حالة الصمود لمواجهة العدوان وترتيب وضع البلد الداخلي والذي توج ايضا بفضل الله سبحانه وتعالى وبجهود جبارة من كل الخير الوطنيين في هذا الوطن باعلان الحكومة التي اتت
पाकिस्तान के वरिष्ठ टीकाकार साकिब अकबर भी यमन में सरकार के गठन को एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। साथ ही उनका कहना है कि यमन का जो भी संकट है वो बाहरी शक्तियों का उत्पन्न किया हुआ है।
मैं समझता हूँ कि अव्वल तो जो बहरान पैदा हुआ वो दरअसल ये जो बाहर की कुवतें हैं खासतौर पे सऊदी अरब और उसके जो अलायंसेस में शामिल हैं लोग और खास तौर पे उसकी सरप्रस्ती जो अमेरिका कर रहा है उसकी वजह से पैदा हुआ। वरना तो सादिक सदर जो था वो चूंकि इस्तीफा दे चुका था तो उसके बाद जो था वो हक ही नहीं रखते थे कि वो इसमें मुदाखलत करते। लेकिन इसके बावजूद यानी एक गरीब और पसमानदा मुल्क को मजीद जो है वो जुल्म के जरिए से पसमानदा कर दिया गया। उसके बाद ये साबित हो गया कि अवाम उसके साथ नहीं है और जो साबिक गवर्नमेंट है उसके अराकीन भी जो है वो भी उसके साथ नहीं है और जो पार्लियामेंट है उसकी भारी अक्सरियत भी उसके साथ नहीं है। तो उससे यही नतीजा निकला। फिर ये कि तीसरा ये कि जो बैरूनी मुदाखलत हुई वो भी साबित हो गया कि रेजिस्टेंस जो है उसको कितनी अवाम की तायीद जो है वो हासिल है और इस सारी की सारी जो कुछ बैरूनी जारियत हुई वो भी बहुत बुरी तरह से जो है वो नाकाम हो गई। और इनका ये ख्याल था कि अदन के जरिए से दाखिल होकर उसके बाद पूरे मुल्क पे कब्जा कर लें। लेकिन लोगों ने जो है वो जिस तरह से इसको रेस्पॉन्स किया है उससे साबित हुआ कि आवाम ने उस सारे जुल्म के सिलसिले को कबूल नहीं किया। अब ये इतने अरसे के बाद मैं समझता हूँ कि एक बड़ी जरूरतमंदी की बात है और बड़ी ये सियासी दानिशमंदी का सबूत दिया है इन सारे मुख्तलिफ पार्टीज ने और हुकूमत के सारे मामलात जो है अपने हाथ में लेने का फैसला किया। तो मेरा ख्याल है इसका नतीजा ये निकलेगा कि बहुत सारे काम जो है वो जो रुके हुए हैं और जो किए जा सकते हैं वो आप मुनज़्ज़म तरीके से मुख्तलिफ वज़ारतखाने जो हैं वो अपना अपना काम शुरू कर देंगे। इससे आलमी सतह पर भी मेरा ख्याल है एक अच्छा पैगाम जाएगा। मेरा ख्याल सबसे एक बड़ा चैलेंज तो वही है जो जारहियत जो है उसको नुमाया किया जाए आलमी बरादरी को भी उससे आगाह किया जाए। अगर के मैं हुकूमतों की बात नहीं कर रहा मैं मासिस की बात कर रहा हूँ और इर्द गिर्द के जो अरब ममालिक के लोग हैं उसको भी इस सारी जारहियत से आगाह किया जाए ताकि लोग जो हैं वो अपनी जो दीगर हुकूमतें हैं जो इसमें खास तौर पर सऊदी अरब और उसके आबारी जो इन्वॉल्व हैं उनको रोकें। जरूरत यह है कि अपने वसाइल को जो चाहे इंसानी वसाइल हों और चाहे माली वसाइल हों उसको मेरा ख्याल है बेहतर तरीके से उसको तकसीम करके तो डेवलपमेंट के जो काम है उसको मेरा ख्याल है उस तरह तवज्जो दी जा सकेगी और एक अच्छा मेरा ख्याल है इस सिलसिले में نتائج نکلیں گے۔
یمن میں سرکار کا گٹھن ہونے کے بعد پورو راشٹرپتی منصور ہادی کا راستہ بند ہو گیا ہے، جو سعودی عرب میں شرن لیے ہوئے ہیں اور وہاں سے کبھی کبھی عدن کا دورہ کر لیتے ہیں۔ منصور ہادی ستا میں واپسی کے سپنے دیکھ رہے تھے، لیکن نئی سرکار کے گٹھن کے بعد ان کے ارادوں پر پانی پھر گیا ہے۔ اس سرکار کو یمن میں ویاپک لوک پریتا رکھنے والے انصار اللہ آندولن سہت انیک دلوں کا سمرتھن پراپت ہے اور اس سرکار میں انیک دلوں کو پرتندھتو دیا گیا ہے۔ نئی سرکار کا گٹھن کرنے کے بعد یمن راجنیتک منچ پر اب ایک نئے چرن میں پہنچ گیا ہے، لیکن یہ بھی طے ہے کہ اس سرکار کے سامنے انیک چنوتیاں ہیں۔ نئی سرکار کو گمبھیر آرتھک سمسیاؤں سے نپٹنا ہے، ساتھ ہی سعودی عرب تتھا اس کے گھٹکوں کے حملوں سے دیش میں جو مانو تراسدی کی استھتی اتپن ہو گئی ہے اس کا سمادھان کھوجنا بھی ایک بڑی چنوتی ہے، وشیش کر اس لیے بھی کہ سنیوکت راشٹر سنگھ جیسی سنستھائیں یمن سنکٹ کے معاملے میں حد سے بڑھ کر سنویدن ہینتا کا پریچے دے رہی ہیں۔ نئی سرکار کے سوچنا و پرسارن منتری احمد حامد نے کہا کہ سنسد نے نئی سرکار کا سمرتھن کیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ یمن میں فیصلہ جنتا کے ہاتھ میں ہے، کسی بھی سرکار کو وید یا اوید بنانے کا ادھیکار جنتا اور سنسد کے پاس ہے۔
من حل البرلمان الثقال الحكومة يؤكد على ان الشعب هو من يقول كلمته وان الشعب هو صاحب القرار۔
یمن کے سانسد احمد العقاری نے سرکار کو سنسد کا سمرتھن مل جانے کے بعد کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سرکار دیش میں شانتی و استھرتا کی استھاپنا کے لیے کام کرے۔
نريد ان يطبق ميدانيا ونريد ان الهدوء والاستقرار والامن يسود هذا الوطن۔
یمن کی جنتا اور سنستھائیں دیش کی استھتی میں سدھار لانے کے ساتھ ساتھ اپنے دھارمک کاریوں میں بھی ویست ہیں۔ یمن کے لوگوں نے بھاری کٹھنائیوں کے بیچ پیغمبر اسلام کے شبھ جنم دیوس کا جشن بھی شروع کر دیا ہے۔
السبيل حبان النجاح محمد الزكي الجميل فاق في مستواه هدانا بحمد الله عم بالهدي المبين أهل للثناء عنوان السرور
جاد بالنوالي حوله وسخا في دين الإخاء۔
پیغمبر اسلام کے اس شبھ جنم دیوس کے اوسر پر یہی دعا کرنی چاہیے کہ یمن کی جنتا کو سنکٹ سے مکتی ملے اور یمن بھی پنر نرماڑ اور وکاس کے راستے پر آگے بڑھے۔